ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 24। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब देवी और लीला पृथ्वी अब तेज आदि आवरणों को लांग गई है, तब परम आकाश उनको भासित हुआ। उसमें उनको धूले की कणिका और सूर्य के त्रसरेणु के समान ब्रह्मांड भासे। वह महाशून्य को धारने वाला परम आकाश है और चिद अणु जिसमें सृष्टि फूर्ती है, वह ऐसा महासमुद्र है कि कोई उसमें अधः को जाता है और कोई ऊर्ध्व को जाता है, कोई तिर्यक गति को पाता है। हे रामचंद्र जी, चित्त संवित में जैसा जैसा स्पंद फुरता है, वैसा ही वैसा आकार होकर भासता है। वास्तव में न कोई अधः है, न कोई ऊर्ध्व है, न कोई आता है और न कोई जाता है। केवल आत्मसत्ता अपने आप में ज्यों की त्यों स्थित है। फूरने से जगत भासता है और उत्पन्न होकर फिर नष्ट होता है। जैसे बालक का संकल्प उपज के नष्ट हो जाता है, वैसे ही चैतन्य संवित में जगत फूर के नष्ट हो जाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, अधः और ऊर्ध्व क्या होते हैं? तिर्यक क्यों भासते हैं और यहां क्या स्थित है? सो मुझसे कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, परमाकाश सत्ता आवरण से रहित शुद्ध बोध रूप है। उसमें जगत ऐसे भासता है जैसे आकाश में भ्रांति से तरुवरे भासते हैं। उसमें अधव और ऊर्ध्व कल्पना मात्र है। जैसे हलों के बेट के चौकिर्द चीटियां फिरती है और उनको मन में अधः ऊर्ध्व भासता है, सो उनके मन में अधः ऊर्ध्व की कल्पना हुई है। हे राघव, यह जगत आत्मा का आभास रूप है। जैसे मंदराचल पर्वत के ऊपर हस्तियों के समूह विचरते हैं, वैसे ही आत्मा में अनेक जगत फुरते हैं। जैसे मंदराचल पर्वत के आगे हस्ती हो, वैसे ही ब्रह्म के आगे जगत है और वास्तव में ब्रह्म रूप है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण सब ब्रह्म ही है और ये जगत ब्रह्म समुद्र के तरंग है। उन जगत ब्रह्मांडों को देवियों ने देखा। जैसे ब्रह्मांड उन्होंने देखे हैं, वे सुनिए। कई सृष्टि तो उन्होंने उत्पन्न होती देखी और कई प्रलय होती देखी। कितने के उपजने का आरंभ देखा, जैसे नूतन अंकुर निकलता है। कहीं जल ही जल है, कहीं अंधकार ही है, प्रकाश नहीं। कहीं सब व्यवहार संयुक्त है और कहीं वेद शास्त्र के अपूर्व कर्म है। कहीं आदि ईश्वर ब्रह्मा है, उनसे सब सृष्टि हुई है। कहीं आदि ईश्वर विष्णु है, उनसे सब सृष्टि हुई है। और कहीं आदि ईश्वर सदाशिव है। इसी प्रकार कहीं और प्रजापति से उपजते हैं, कहीं नाथ को कोई नहीं मानते। सब अनिश्वरवादी है। कहीं तिर्यक ही जीव रहते हैं, कहीं देवता ही रहते हैं और कहीं मनुष्य ही रहते हैं। कहीं बड़े आरंभ करके संपन्न है और कहीं शून्य रूप है। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार उन्होंने अनेक सृष्टि चिदाकाश में उत्पन्न होती देखी, जिनकी संख्या करने को कोई समर्थ नहीं। चिदात्मा में आभास रूप फुरती है और जैसे फुरना होती है उसके अनुसार फुरती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार दोनों देवियां राजा के जगत में आकर अपने मंडप स्थानों को देखती भई। जैसे सोया हुआ जाग के देखता है, वैसे ही जब अपने मंडप में उन्होंने प्रवेश किया तब क्या देखा कि राजा का शव फूलों से ढापा हुआ पड़ा है। अर्धरात्रि का समय है, सब लोग गृह में सोए हुए हैं और राजा पद्म के शव के पास लीला का शरीर पड़ा है और अंतःपुर में धूप चंदन कपूर और अगर की सुगंध भरी है। तब वे विचारने लगे कि वहां चले जहां राजा राज्य करता है। उसकी पुर्यष्टक में विदुरथ का अनुभव हुआ था, उस संकल्प के अनुसार विदुरथ की सृष्टि देखने को देवी के साथ लीला चली और अंतवाहक शरीर से आकाश मार्ग कोड़ी, जाते जाते ब्रह्मांड की बाट को लांग गई। तब विदुरथ के संकल्प में जगत को देखा। जैसे तालाब में सेवार होती है, वैसे ही उन्होंने जगत को देखा। सप्तद्वीप, नवखंड, सुमेरु पर्वत, द्वीप आदि सब रचना देखी और उसमें जम्बू द्वीप और भरतखंड और उसमें विदुरथ का राजा और उसका मंडप स्थान देखती भई। वही उन्होंने राजा सिद्ध को भी देखा कि राजा विदुरथ की पृथ्वी की कुछ हद उसके भाइयों ने दबाई थी और उसके लिए सेना भेजी। राजा विदुरथ ने सुन के सेना भेजी और दोनों सेना मिलके युद्ध करने लगी। फिर उन्होंने देखा कि त्रिलोकी युद्ध का कौतुक देखने को आई है। देवता विमानों पर आरूढ़ और सिद्ध चारण, गंधर्व और विद्याधर शास्त्रों को छोड़ देखने को भय स्थित है। विद्याधरी और अप्सरा भी आई है कि जो शूरमा युद्ध में प्राणों को त्यागेंगे हम उनको स्वर्ग में ले जाएंगे। रक्त और मांस भोजन करने को भूत, राक्षस, पिशाच, योगिनियां भी आन स्थित भई है। हे रामचंद्र जी, शूर पुरुष तो स्वर्ग के भूषण है और अक्षय स्वर्ग को भोगेंगे और जिनका मरना धर्म पक्ष से संग्राम में होगा वह भी स्वर्ग को जावेंगे। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, शूरमा किसको कहते हैं और जो युद्ध करके स्वर्ग को नहीं प्राप्त होते वे कौन हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो शास्त्र युक्ति से युद्ध नहीं करते और अनर्थ रूपी अर्थ के निमित्त युद्ध करते हैं सो नरक को प्राप्त होते हैं, और जो धर्म, गौ, ब्राह्मण, मित्र, शरणागत और प्रजा के पालन के निमित्त युद्ध करते हैं वे स्वर्ग के भूषण हैं। वे ही शूरमा कहते हैं और मर के स्वर्ग को जाते हैं और स्वर्ग में उनका यश बहुत होता है। जो पुरुष धर्म के अर्थ युद्ध करते हैं वे अवश्य स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं और जो अधर्म से युद्ध करते हैं वे मृतक को नरक को प्राप्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष कहते हैं कि संग्राम में मरे सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं वे मूर्ख है। स्वर्ग को वही जाते हैं जिनका मरना धर्म के अर्थ हुआ है। जो किसी के भोग के अर्थ युद्ध करते हैं सो नरक को ही प्राप्त होते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, दोनों देवियों ने रण संग्राम में क्या देखा कि एक महाशून्य वन है, उसमें जैसे दो बड़े समुद्र उछलकर परस्पर मिलने लगे, वैसे ही दोनों सेना जुड़ी है। तब उन्होंने क्या देखा कि सब योद्धा आन स्थित हुए हैं और मच्छव्यूह, गरुड़व्यूह और चक्रव्यूह भिन्न भिन्न भाग करके दोनों सेना के योद्धा एक एक होकर युद्ध करने लगे हैं। प्रथम परस्पर देख एक ने कहा कि यह बाण चलाओ और दूसरे ने कहा कि नहीं तू चला। उसने कहा नहीं तू ही प्रथम चला। निदान सब स्थिर हो रहे मानो चित्र लिखे छोड़े हैं। इसके अनंतर दोनों सेना के ओर योद्धा आए मानो प्रलय काल में मेघ उछलते हैं। उनके आने से एक एक योद्धा की मर्यादा दूर हो गई। तब इकट्ठे युद्ध करने लगे और बड़े शस्त्रों के प्रवाह के प्रवाहल करने लगे। कहीं खड़ंगों के प्रहार चलते थे और कहीं कुल्हाड़े, त्रिशूल, भाले, बर्छिया, कटारी, छुरी, चक्र, गदा आदि शस्त्र बड़े शब्द करते चलने लगे। जैसे मेघ वर्षा काल में वर्षा करते हैं, वैसे ही शस्त्रों की वर्षा होने लगी। हे रामचंद्र जी, प्रलय काल के जितने उपद्रव थे सब इकट्ठे हुए हैं। योद्धा युद्ध की ओर आए और कायर भाग गए। निदान ऐसा संग्राम हुआ कि अनेकों योद्धाओं के सिर काटे गए और उनके हस्ती घोड़े मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। जैसे कमल के फूल काटे जाते हैं, वैसे ही उनके शीश काटे जाते थे। तब दोनों सेनाओं के राजा चिंता करने लगे कि क्या होगा। हे रामचंद्र जी, इस युद्ध में रुधिर की नदियां चली, उनमें प्राणी बहते जाते थे और बड़े शब्द करते थे, जिनके आंखें मेघों के शब्द भी तुच्छ भासते थे। हे रामचंद्र जी, दोनों देवियां संकल्प के विमान कल्प के आकाश में स्थित हुए तो क्या देखा कि ऐसा युद्ध हुआ है जैसे महाप्रलय में समुद्र एक रूप हो जाते हैं और बिजली किनाई शस्त्रों का चमत्कार होता था। जो शूरवीर है उनके रक्त की जो बूंदियां पृथ्वी पर पड़ती है, उन बूंदों में जितने मृतिका के कण के लगे होते हैं उतने ही वर्ष वे स्वर्ग को भोगेंगे। जो शूरमा युद्ध में मृतक होते थे उनको विद्याधरिया स्वर्ग को ले जाते थे और देवगण स्तुति करते थे कि ये शूरमा स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं, अर्थात अक्षय अर्थात चिरकाल स्वर्ग भोगेंगे। हे रामचंद्र जी, स्वर्गलोक के भोग मन में चिंतन करके शूरमा हर्षवान होते थे और युद्ध में नाना प्रकार के शस्त्र चलाते और सहन करते थे और फिर युद्ध के सम्मुख धीरज करके स्थित होते थे। जैसे सुमेरु पर्वत धैर्यवान और अचल स्थित है, उससे भी अधिक वे धैर्यवान थे। संग्राम में योद्धा ऐसे चूर्ण होते थे जैसे कोई वस्तु उखली में चूर्ण होती है, परंतु फिर सम्मुख होते और बड़े हाहाकार शब्द करते थे। हस्ती से हस्ती परस्पर युद्ध करते शब्द करते थे। हे राम जी, इसी प्रकार अनेक जीव नाश को प्राप्त हुए। जो शूरमा मरते थे उनको विद्याधरिया स्वर्ग को ले जाते थे। निदान परस्पर बड़े युद्ध हुए हैं। खड़ंग वाले से और त्रिशूल वाले से युद्ध करते हैं। जैसा जैसा शस्त्र किसी के पास हो वैसे ही उसके साथ युद्ध करें, और जब शस्त्र पूर्ण हो जावे तो मुष्टि के साथ युद्ध करें। इसी प्रकार दशो दिशाएं युद्ध से परिपूर्ण हुई है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार बड़ा युद्ध हुआ तो गंगा जी के समान शूरमों के रुधिर का तीक्ष्ण प्रवाह चला, और उस प्रवाह में हस्ती, घोड़े, मनुष्य, रथ सब बह जाते थे और सेना नाश को प्राप्त होती जाती थी। हे राम जी, उस समय बड़ा क्षोभ उदय हुआ और राक्षस, पिशाच आदि तामसी जीव मांस भोजन करते और रुधिर पान करते आनंदित होते थे। जैसे मंदराचल पर्वत से क्षीर समुद्र को क्षोभ हुआ था, वैसे ही युद्ध संग्राम में योद्धाओं का क्षोभ हुआ और रुधिर का समुद्र चला। उसमें हस्ती, घोड़े, रथ, शुरमा तरंगों की नई उछलते दृष्ट आते थे। रथ वाले से रथ वाले, घोड़े वालों से घोड़े वाले, हस्ती वाले से हस्ती वाले और प्यादे से प्यादे युद्ध करते थे। हे राम जी, जैसे प्रलय काल की अग्नि में जीव जलते हैं, वैसे ही जो योद्धा रणभूमि में आवे सो नाश को प्राप्त हो। जैसे दीपक में पतंग प्रवेश करता है और जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती है, वैसे ही रणभूमि में दशों दिशाओं के योद्धा प्रवेश करते थे। किसी का शीश काटा जावे और धड़ युद्ध करे, किसी की भुजा काटी जाए और किसी के ऊपर रथ चले जावे और हस्ती, घोड़े उलट पलट पड़े और नाश हो जावे। हे राम जी, दोनों राजाओं के सहायता के निमित्त पूर्व दिशा काशी, मद्रास, भीला, मालो, सकल, कवटा, किरात, म्लेच्छ, पारसी, काश्मीर, तुरक, पंजाब, हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत इत्यादि के अनेक देशपाल, जिनके बड़े भुजदंड, बड़े केश और बड़े भयानक रूप थे, युद्ध के निमित्त आए। बड़ी ग्रीवा वाले, एक टंगे, एकाचल, एकाक्ष, घोड़े के मुख वाले, श्वान के मुख वाले और सुमेरु और कैलाश के राजा और जितने कुछ पृथ्वी के राजा थे सो सब आए। जैसे महाप्रलय के समुद्र उछलते हैं और दिशा, स्थान सब जल से पूर्ण होते हैं, वैसे ही सेना से सब स्थान पूर्ण हुए हैं और दोनों ओर से युद्ध करने लगे। चक्र वाले से और खलक, खड़ंग, कुल्हाड़े, त्रिशूल, छुरी, कटारी, बर्छी, गदा, वाण आदि शस्त्रों से परस्पर युद्ध करने लगे। एक कहे कि प्रथम मैं जाता हूं, दूसरा कहे कि मैं प्रथम जाता हूं। हे रामचंद्र जी, उस काल में ऐसा युद्ध होने लगा कि कहने में नहीं आता। दौड़ दौड़ के योद्धा रण में जावे और मृत्यु को प्राप्त हो। जैसे अग्नि में घृत की आहुति भस्म होती है, वैसे ही रण में योद्धा नाश को प्राप्त होते थे। ऐसा युद्ध हुआ कि रुधिर का समुद्र चला, उसमें हस्ती, घोड़े, रथ और मनुष्य त्रणों की नाई बहते थे और संपूर्ण पृथ्वी रक्तमय हो गई। जैसे आंधी से फल, फूल और वृक्ष गिरते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर कट कट शब्द करते शीर गिरते थे। हे रामचंद्र जी, जो उस काल में युद्ध हुआ वह कहा नहीं जाता। सहस्त्र मुख शेष नाग भी उस युद्ध के कर्मों को संपूर्ण वर्णन न कर सकेंगे तब और कौन कहेगा। मैंने वह संक्षेप से कुछ सुनाया है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।